कि भगवत्ता के दृष्टि से तो वैसे किसी प्रकार की शंका को स्थान नहीं, और जहां ये ऐश्वर्य का संकल्प नहीं, बिल्कुल माधुर्य का विस्तार, वहां तो इस प्रकार की कोई वस्तु कल्पना में आती नहीं। तो भगवान इस प्रकार मुंह बढ़ा देते हैं, तो कई बार तो बच्चे हाथ से और कई बार मुंह से मुंह लगा के दे देते हैं। तो सुखदेव जी महाराज इस भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीला का वर्णन करते करते स्वयं परमानंद में अधीर हो गए। भगवान की रसमयी लीला ऐसी है कि जो वास्तव में रसग्राही लोग हैं, जो रस के उत्सुक हैं और रसोत्सुकता परीक्षित में विशेष भाव से इस समय ये प्रत्यक्ष दिखती है, तो वो कहते हैं कि महाराज सुनाया जाओ, हमें तो यही सुननी है, तृप्ति होती नहीं हमारी। और परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में वो कहते हैं तुम महाभाग हो और तुम भागवतोत्तम हो, क्योंकि तुम इस लीला कथा के श्रवण में। ये परीक्षित कहता है महाराज मरने का समय मैं यहां बैठा और अब आप मुझे वैसी बात सुनाइए कि जिसमें तात्विक ज्ञान मुझे हो जाए और मैं परमानंद रूप होकर के परमानंद में समा जाऊं। ये बात नहीं पूछी। वो कहते हैं कि महाराज बाल लीला सुनते सुनते मैं तो अघाता नहीं, मेरे से आते रही आप। तो ये जो रसोत्सुकता है ये इस बात को प्रकट करती है कि परीक्षित अधिकारी, तो इस अधिकारी के सामने खुल गया है हृदय सुखदेव जी का, सारी लीलाएं उनके सामने मूर्तिमान हो गई और परीक्षित रसाविष्ट परीक्षित को देखकर गदगद स्वर में बोले भारत ही भरत कुल प्रदीप। इस प्रकार वेद बालक हास्य कौतुक करते हुए, हंसी मस्करी विनोद करते हुए, खेलते हुए सब मानो अपने आप को खो गए थे। वहां केवल श्री श्याम सुंदर और श्याम सुंदर का आनंद रस यही रह गया। और कहती है कि न मालूम कितनी देर लगी इसमें, ये काल का व्यवधान हम लोगों के लिए है, कितनी देर लगी इस बात का कोई पता नहीं, अनुमान नहीं हो सका, क्योंकि ये तो सब आनंद में डूबे हुए थे। इस प्रकार भोजन चल रहा, विनोद हो रहा, सबके सब गोप शिशु आनंद प्रवत्त, तो अपनी सुध-बुध खोए हुए थे, तो इनको ये ख्याल नहीं रहा इस समय कि बछड़े चल रहे हैं कि नहीं, समीप में बछड़ों को सामने छोड़ दिया था। तो सबकी दृष्टि थी श्याम सुंदर के प्रति और आनंद के प्रति। तो एक अब भगवान की लीला शक्ति, एक बालक ने उधर देखा तो बछड़ी दिखाई नहीं दिए, जो अब तक सामने दिख रहे थे वो दिखाई नहीं दिए। तो सोचा कि ये कहां गए, तो उसके मन में डर हो गया। उसने कहा भैया ये बछड़े जो यहां पर चल रहे थे कहां चले गए, सब ने तो देखा, अरे बछड़े तो नहीं है, कहां गए बछड़े। तो श्री कृष्ण भी इस बात को समझ गए। अब ये बालक सब के सब उद्विग्न हो गए, बच चरित बनमान प्रम लोभित चल दूर गे, सखन लखा जब नाम भय ते अति चकित भय। बालक तुरंत सब डर गए कि बछड़े खो गए, तो शाम को मैयाओं के पास जाके क्या कहेंगे, कहाँ गए, हम लोग तो भोजन में इतने आज नया नया यहाँ पर बल भोजन किया और ये विपत्ति आ गई, अब क्या करें। तो छोटे की दशा कुछ जो बड़ी उम्र के थे वो बोले अरे भैया कृष्ण देख तो सही, कृष्ण सखे सखेदास में नई को दृश्य के उत्साह, भैया श्याम सुंदर देख तो सही, बछड़ा कोई दिखाई नहीं देता और ये सब बच्चे ये तुम्हारे साथी सब चिंता में डूब गए, तो मालूम होता है ये नई नई घास जो यहाँ पर उगी हुई इसको चरते हुए ये घास के लोभ से आगे बढ़ गई, ये मालूम होता है। तो हम लोग अब सब चलें और उनको ढूंढ लाएं, बच्चों ने कहा। तो ये बात इनकी पूरी हुई नहीं कि तो एक बच्चा, ये तो बड़े बुद्धिमान सब आप, ये तो विनोद की बुद्धिमानी। तो एक बच्चे ने मैंने बड़ा बुद्धिमान है वो बोला, अरे कन्हैया ये सब तो पागल, हमने तो पहले ही जानता था कि आज तक कन्हैया भैया को छोड़ करके कोई बच्चा दूर नहीं गया, तो आज जाता कैसे, अपने आप नहीं गए। तुम कहते हो घास के लोग से गए, अपने आप नहीं गए, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि वो अजगर को जिसने जिसको मार दिया था ना, जो कन्हैया कहीं उसको मारा था ना, तो मार के उसको जलाया तो नहीं, छोड़ जाए वैसे ही। अरे आवश्यकता थी कि बन की लकड़ियां काट के जला देते उसको, और हमने सुना है कि सांप या हवा पी कर फिर जी उठते। सो मालूम होता है वही फिर जी उठा और वही आ गया। ये कहते कहते उसकी वाणी रुक गई, आंखों में उसके जल आ गया। दूसरे ने कहा अरे वो ना आया, और दूसरे भी तो दूसरा भी कोई राक्षस आ सकता है, ये नए रे सब आते हैं और कन्हैया सबको मार देता है, तो कोई आ गया होगा। इस प्रकार से वो बच्चे सब संकल्प विकल्प करते हुए अपनी अपनी समझ की बात कहने लगे, पर इस बात पर सब सहमत हो गए कि भाई चलो ढूंढें। बहुत देर हो गई, सबके मुंह पर भय की रेखा खिंच गई, पर श्याम सुंदर के मुख पर कोई विकृति नहीं है, वो जैसे थे वैसे ही बस के खड़े हो गए। अब तक भोजन कर रहे थे, खड़े हो गए और कोई उद्विग्नता का कोई लक्षण नहीं, कोई चिन्ह नहीं, बस उनके वो अरुण अरुण अधरों पर उसी प्रकार स्मित मधुभाष छा रहा है, नेत्र कमलों में उसी प्रकार की उत्फुल्लता है, खिले हुए नेत्र वैसे के वैसे, सखाओं को डरे हुए देख करके भगवान बोले अरे भैया डरो मत, तां दृष्टिया भय संतुष्टा नीचे कृष्णोश भी भयम, डरो मत भैया मिथिला न्यासान्मा दुर्म तिहा निश्चय वत्सका नहीं, डरो मत, तुम सब खाओ मजे में, तुम भोजन करते रहो और मैं ढूंढ के ले आता हूं उनको अभी। ओ मित्र तुम भोजन करो, अपने मन तन को जिन डरो, बछड़े में हम ले यही अवे बैठे रहो लो सुख सबे, तुम लोग सुख से बैठो खाओ भैया, और मैं अभी जाता हूं अभी ले आता हूं बछड़ों को। तो नीलमणि नील सुंदर श्याम सुंदर ने कह तो दिया, पर श्याम सुंदर इनको छोड़ के चले जाए और ये अकेले रह जाए, ये इसमें स्वीकृति कौन देता। बोले ना ना भैया तुमको नहीं जाने देंगे हम तो अकेले, तुम कहीं चले जाओ फिर हम मई जाए, कोई अगासुर खगासुर कोई आ जाए, तो ये नहीं। और फिर भैया बात ये है कि तुमको देखे बिना हमसे रहा नहीं, हम जब रात को रहते हैं ना अपनी अपनी मैयाओं के पास, तब भी हमारे मन में तुम बसे रहते हो, और तब भी मालूम क्या तुमको जादू वादू जानते हो ये तो पता नहीं, पर हमको ऐसा मालूम होता है कि तुम रात को हमारे पास ही रहते हो, हमारी आंखों के सामने तुम रात को भी जब हम कभी आंख खुलते तो देख रहे श्याम सुंदर, तो तुम कहते हो हाँ भैया बोले, ऐसे तुम रात दिन खड़े रहते हो हमारे साथ, तो अब तुम हमें छोड़ के अकेले वन में चले जाओ ढूंढने, ये नहीं, सखाओं में एक स्वर से कहा नहीं होगा ये नहीं होगा, तुमको नहीं जाने देंगे। विचित्र भाव, श्रीराम ने तो पीतांबर का छोर पकड़ लिया, वो नहीं जाने देंगे। सुबल ने दोनों कंधों पर हाथ रख लिया, बोले बस रुके रहो, हिलने नहीं देंगे। ये मानो देवनी सरदार रहे सुबल श्रीराम, इन्होंने सबका मन प्रतिनिधित्व किया। अब वो भगवान ने देखा कि क्या करें, अब ये बाल माधुरी है, इनके भोजन में विघ्न पड़ेगा। अब इनके सुख से सुखी है ना, ये अपने कई दफा बात हुई है कि प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेमास्पद का सुख ही अपना सुख बन गया, ये प्रेम है। काम और प्रेम यही अंतर है, काम चाहता है स्वसुख और प्रेम चाहता है प्रेमास्पद का सुख। अपना सुख दुख प्रेमी की कल्पना में नहीं आता, स्मृति में नहीं आता, वो निरंतर स्वभाव से ही सहज ही प्रेमास्पद का सुख स्वरूप बन जाता है। तो भगवान से जो प्रेम करते हैं ये बिल्कुल विचित्र बात है, भगवान उनके प्रेम की कामना करने लगते हैं, प्रेम रस की, और उनको सुखी देखने के लिए उनकी प्रत्येक सेवा को उनके इच्छानुरूप स्वीकार करते हैं। ये माखन चोरी, ये वन भोजन, ये स्तनपान, ये सारा का सारा इसीलिए है कि उनके प्रेमियों को सुख मिले, परंतु उनके प्रेमियों को सुख मिले ये दिखावा नहीं है, ये नाट्य नहीं, मन में ऐसा भाव ना आया हो और ऊपर से उनकी प्रसन्नता के लिए दिखाते हों, ये दंभ नहीं। स्वाभाविक श्री श्याम सुंदर इसी प्रकार के बन जाते हैं स्वयं, उनको भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, उस सेवा करवाना चाहते हैं, गर्मी लगती है, हवा करवाना चाहते हैं, थक जाते हैं, सेवा करवाना चाहते हैं, ये थकावट, ये श्रांति, ये भ्रांति, ये क्षुधा, ये पिपासा स्वयं सब बन जाते हैं और बन करके स्वयं रसा स्वादन करते हैं, खुद भी कराती नहीं। तो ये सब बालक भोजन कर रहे थे, लाए भैया कि इनके सुख में बाधा पड़ेगी, तो ये भोजन करते रहे और हम चले जाएं, हृदय वाले जो सब सखा हैं बालक इनका बड़ा आग्रह कि हम जाने देंगे नहीं, पर इनको जाना अकेले ही क्योंकि यहां दूसरा काम करना है, केवल बच्चों का हरण तो नहीं है ना, इन बालकों का भी हरण होना चाहिए, तभी ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण होगी, तभी एक बड़ी विचित्र बात और है वो पूरी होगी। तो एक नई युक्ति निकाली उन्होंने, श्याम सुंदर ने नई युक्ति निकाली और बोले भैया देखो अब ये बछड़े तो गए, अब पता है नहीं किस दिशा में गए हैं, सब साथ ही गए हैं कि अकेले अकेले कोई किधर निकल गया है, और आगे भैया बड़ा घना जंगल है, तो मान लो हम लोग सब भीड़ में जाए और कहीं तुम में से कोई खो जाए, अरे कोई अलग अलग खो जाए और शाम को मेरे को घर जाएंगे कैसे, तो ढूंढे ढूंढे ढूंढ ढूंढ फिर कोई खो जाए, तो भैया तुम लोग यहीं रहो, मैं कोई दूर थोड़ी जाता हूँ, वो देखो ऊंचा टीला है ना, उस टीले पर जो देख रहे तमाल का पेड़, उसके नीचे खड़ा होकर सब बछड़ों को पुकारूंगा, और तुम तो रोज देखते ही हो, जब मैं पुकारता हूं तो सब बछड़े कहीं पर दूर पर आ जाते, इकट्ठे हो जाते हैं, तो तुम देखते रहो, तुम खाते भी रहो, देखते रहो मेरी ओर, तमाल के पेड़ के नीचे उस टीले पर मैं जा करके पुकारता हूं तमाम बछड़ों को, तो बछड़े आ जाएंगे और मैं उनको ले आऊंगा, तुम देखते रहना, इतने तुम खाते पीते रहो, अरे जहां बछड़े मेरी पुकार सुनेंगे तो कूदते फांदते तुरंत आ जाएंगे मेरे बुलाते ही, तो बस मैं अभी ले आता हूं, तुम लोग मजे में भोजन करो। अब महाराज ये कहते हुए श्री कृष्ण श्याम सुंदर के वो दुंडा फल को लगाने वाले अरुण अधरों पर मुस्कान आ गई। अब इनकी जो मुस्कान है ना, ये तो प्रमत्त बना देने वाली, मुनि मन हारिणी, सबके विचारों को बदल देने वाली तुरंत। तो कहां तो बच्चों के मन में था कि श्रीकृष्ण अकेले न जाएं, हम सब जाएंगे, और यहाँ इन्होंने अकेले जाने का प्रस्ताव करके जहाँ जरा सा मुस्कुरा दिया कि बच्चे सब उस मुस्कुराहट में अपने आप को भूल गए। ये जहाँ हाथ से रेखा भगवान के अधोस्थ पर खेलने लगती है, वहाँ संसार में कौन ऐसा है जो उसके वश में न हो जाए। और फिर ये बच्चा, एक एक बच्चा ब्रज का, ये तो इस मुस्कान संपत्ति का स्वामी है। इन्हीं के लिए मुस्कुराते हैं भगवान। तो कन्हैया भैया की मुस्कान देखकर मोहित हो गए सब के सब। और असल में ये वैसे जो अचिंत लीला महाशक्ति भगवान की है, उसकी योजना का ही एक अंश है। वो लोग माया के अंचल की ये चमक है, वो नील सुंदर नीलमणि के ओष्ठों पर आकर मन एक आवरण डाल देती है, पर्दा डाल देती है। और श्रीकृष्ण सखाओं के को मानो ढक देती है, क्योंकि जहां गोवत्स गए हैं वहीं इनको भी जाना है। तो अगर ये आदत न हो तो ब्रह्मा के सामर्थ्य नहीं कि इनको हर के ले जा सकें। ये स्वेच्छा से श्याम सुंदर को छोड़ दें, अकेले जाएं, ये होता नहीं। तो इन पर भी भगवान ने, स्वयं भगवान की लीला शक्ति ने, माया शक्ति ने आवरण डाला। तो ये स्वजन मन मोहिनी माया होती है। भगवान की माया जो है, वो जो अविद्या माया है, जो अज्ञान का प्रसार करके जगत को तम से ढक देती है, वो और माया। और माया के जो ऊंचे स्तर हैं जिनका लीला में विकास होता है, वो माया होती है स्वजन मन मोहिनी। और आगे बढ़कर स्वमन मोहिनी बन जाती है, भगवान के अपने मन को भी मोहित कर लेती है, स्वजनों के मन को मोहित करती है, उन पर और कोई माया नहीं चलती। तो कन्हैया भैया की जब ये बात सुनी कि भैया अकेले हम जाएंगे, सबको ले आएंगे, तुम ठहरो, ये बात और सबको जच गई, सब ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कौन विरोध करता? अब वो भगवान जो है चले धीरे धीरे, और उसी किले पर जा पहुंचे। तमाल वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हो गए, चारों तरफ देखा, बाल माधुरी है इस समय, सर्वज्ञता ऐश्वर्य छपा है। वो तो सेवा करता है, ये भगवान की मधुर बाल लीला में ऐश्वर्य जो है, ये सेवा करने का मौका तो ढूंढता है, पर बाधक नहीं होता। कहीं ये बीच में प्रकट हो जाए तो माधुर्य के प्रवाह में एक बांध लग जाए, तो ये माधुर्य के प्रवाह में बाधा नहीं देता, सेवा का अवसर ढूंढता है। जब कभी वो मधुरिमा में किसी प्रकार की कोई रुकावट आने लगती है, तब ऐश्वर्य उसको जरा हटा देता है, इतना ही काम करता है। तो यहां बाल माधुरी भगवान की खड़े हो गए जा करके, और देखा चारों तरफ, दूर दूर तक कहीं बछड़ा नहीं दिखाई दिया। तब बड़े जोर से पुकारने लगे वहां पर बछड़ों का नाम ले ले करके, और दिन तक जहां इनका संकेत पाया कि बछड़े दौड़े हुए फुदकते कूदते हुए आए, आज कोई बछड़ा नहीं आ रहा है। तो सोचने लगे कि मालूम नहीं ये कहीं आस पास के घने जंगल में पहुंच गए हूं और वहां मेरी आवाज न पहुंचती हो। तब वहां से उतरे और घने जंगल में प्रवेश कर गए श्याम सुंदर। वहां भी सब जगह देखा, पुकारा, पर कहीं पर भी संधान नहीं मिला। सघन कुंजों में गए, जहां निर्जन कोई प्राणी नहीं, इस प्रकार के वन प्रदेशों में गए और संकट के स्थानों में भी गए, गढ़ों में उतरे, जहां ऐसे घने वृक्ष थे कांटेदार, वहां भी गए, पर कहीं भी कोई बछड़ा दिखाई नहीं दिया। तो सोचा कि कहीं ये गिरिराज गोवर्धन की हरी हरी झांकी देख करके तो कहीं ऊपर न चढ़ गए हों। तो भगवान पर्वत की ओर गए और पर्वत का प्रत्येक स्तर देखते हुए ऊपर जाकर है ढूंढा। गोवर्धन की एक एक गुफा को देखा परंतु सारे प्रयास व्यर्थ हो गए, कहीं भी श्याम सुंदर मिले नहीं, बछड़े मिले नहीं श्याम सुंदर को। अब ढूंढते ढूंढते न मालूम कितना समय बीत गया, गोवत्स नहीं मिले और जब तक वो नहीं मिलते तब तक इनको विश्राम का इनको ढूंढना है। अब माना ढूंढते रहेंगे, ये सारा जगत और जगत के बड़े बड़े तत्व के लोग भगवान को ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते पाते नहीं हैं। और स्वयं श्रुतियां जो ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञानमय है, वो ढूंढते ढूंढते कह देती है नीति नीति नयति नयति, ये भी वो नहीं ये भी वो नहीं। श्रुति दुर्वत ज्ञान भगवान मिलते नहीं। आज वे भगवान स्वयं बछड़ों को ढूंढ रहे हैं और बछड़े मिल नहीं रहे। और वही झांकी क्या है, वही हाथ में ग्रास लिए हुए, वैसे तो फिर चले थे ना, अब हाथ में धो करके कहीं बाहर निकले हैं, ऐसी बात नहीं। इतुत्वा दुर्गवी कुंज गहरेश्वात्मवत्सकान विचिन्वन भगवान कृष्ण सतान कबलो यो, ऐसे कही बन गहर कुंज तम करी भरी दरी तह पुंज, ढूंढते बच्छ विश्व के नाथ भोजन कवर लिए ही हाथ। हाथ में वही ग्रास है गदिवोदन का, वही अंगुलियों में अचार और फल लिए हुए हैं, उसी प्रकार बंसरी को खोसे हुए हैं कमर में, बगल में सींग दबाए बीत दबाए, वही श्याम सुंदर उसी अंग्रास से सुशोभित हुए बार बार घने घने जंगलों में कुंजों में गह्वरों में पर्वत के भागों में गिरगरियों में गोवत्सों को ढूंढ रहे हैं, अविराम ढूंढ रहे हैं, कहीं उनको विश्राम नहीं लेते। अब कहते हैं भाई श्रुतियां कहती सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ नहीं सर्वज्ञ हैं, इनके लिए देश काल का कोई व्यवधान नहीं। अमुक देश की बात मैं जानते हूं और अमुक भविष्य की बात मैं जानते हूं, ऐसा नहीं। पर यहां तो ये जिनको श्रुतियां सर्व सर्वज्ञ कहती हैं, वे भगवान अनंत ऐश्वर्य के धाम भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं इस बाल्यावेश में मालूम आज किस किस प्रकार का भाव प्रकट कर रहे हैं। कभी विवास हो जाते हैं, अरे मिले नहीं बछड़े और हमारे ये सखा सब व्याकुल हो रहे होंगे और मालूम क्या है। तो ये मानो लीला शक्ति की प्रेरणा से ये रंगभूमि में नाट्यशाला में ये नए नए पर्दे आ रहे हैं। तो भगवान इस प्रकार ढूंढ रहे, अब मधुर लीला ये भगवान की चल रही। बात क्या हुई इस असल में कि ये अघासुर का जब विनाश हुआ और विनाश के साथ उसका परम पद लाभ हुआ, ज्योति उसके अंदर से निकली हुई श्याम सुंदर के अंतर में समा गई, देवताओं की धुंधुबियां बजी, शंख बजे, किन्नर गंधर्व सब गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, जब लोग महर लोग तपो लोग सब प्रतिनादित हो उठे तो ब्रह्मा जी इस आश्चर्य को देखने के नीचे उठे। तो ब्रह्मा जी ने सब कुछ देखा। यहां दो भाव हैं, दोनों ही भाव ग्राह्य हैं, पर मधुर भाव वाले लोग दूसरे को अधिक ग्राह्य मानते हैं। ब्रह्मा को मोह हो गया, मोह तो दोनों ही मानते हैं। एक वर्ग के विद्वान मानते हैं कि ब्रह्मा जी को मन में संदेह हो गया, ये भगवान है कि नहीं। वहां तक तो ठीक, अघासुर को मार दिया, ऐश्वर्य था ना, अघासुर को मार दिया और अघासुर के अंदर से ज्योत निकली भगवान में समा गई, यहां तक तो कोई संदेह की बात नहीं, बड़ा ठीक। पर ये बच्चों के साथ इनकी ये पीड़ा देखी, इस प्रकार खेलना और उन्मत्त हो जाना और बच्चों की तरह से ये चेष्टा करना, भागना, दौड़ना, कूदना, ये सब करना, हंसना, हंसाना, विनोद करना, उच्छिष्ट देना लेना इत्यादि, तो ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया कि पता नहीं कहीं हम मोह में तो नहीं है। पर अगर उल्टा मोह में, हम मोह में तो नहीं है, जरा परीक्षा करके देखें, ये एक चीज। दूसरा वर्ग मधुर भाव का, वो कहता है नहीं नहीं, ब्रह्मा जी को संदेह नहीं हुआ, वो तो अवश्य हो गया कि उन्होंने भगवान के वत्सों को और भगवान के सखाओं को हरण करने की माया से काम लेना चाहा, ये मोह हुआ। पर वो मोह हुआ इसीलिए कि भगवान की लीला माधुरी को और देखें, संदेह से नहीं। हम मोहित कर देंगे इनको, मुग्ध कर देंगे, हर ले जाएंगे अपनी शक्ति से, ये मोह हुआ। तो ब्रह्मा जी जो थे वहां पर, जब उन्होंने लीला रस को देखा, तो ये लीला रस पान तो कभी समाप्त तो होता नहीं, और ये भोजन करने के बाद ये लीला जरा समाप्त तो हो जाएगी तो दूसरी हमारी कैसी लीला होगी। तो उनकी रसपान की जो लालसा थी ब्रह्मा जी की, ये और भी प्रबलतम हो गई। उन्होंने सोचा कि भाई इस कृपा का एक कण अगर मुझे फिर प्राप्त हो जाए, ये तो इनके भाग्यशाली प्राप्त करने योग्य अधिकारी तो ये गोप बालक हैं, मैं तो हूं नहीं। ये कहेंगे पीछे ब्रह्मा जी अपने स्तवन में, वो चाहेंगे कि मैं इस ब्रज में गोकुल में कुछ भी बना दिया जाऊं, तो ये अभी मानते हैं कि इसका अधिकारी तो नहीं है, मैं अधिकारी नहीं, पर किसी प्रकार से मैं देख सकूं ऐसी कोई नवीन विचित्र लीला इनकी हो कि जिसमें रस टपकता हो, कि लीला माधुरी का कुछ किंचित और भी आस्वाद मिल जाए और मैं कृतार्थ हो जाऊं। तो ये इच्छा, ब्रह्मा जी की इच्छा भगवान के मन में प्रतिफलित हो, ये प्रतिबिंबित हो गई। भगवान निरीह हैं, भला इच्छा रहित हैं, प्रेमियों की भक्तों की इच्छा ही भगवान की इच्छा बन जाती है, और भगवान की इच्छा और इच्छा की पूर्ति दोनों साथ होते हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि हम इन बछड़ों को कहीं माया से मुग्ध करके छिपा दें, और छिपाने के बाद देखें क्या करें, और ये कहीं इधर उधर हो जाए तो उन बालकों को भी छिपा दें, फिर देखेंगे ढूंढने में कैसी कैसी बाल माधुरी ये दिखलाते हैं। ब्रह्मा जी के मन में बाल रस, बाल माधुरी देखने की आई, ऐश्वर्य से तो उनको ऐसी बात नहीं, ऐश्वर्य तो वो भी देखते हैं। तो ये भगवान की जो बृहत्ता है, सर्वेश्वरता है, विश्व कर्तृत्व है, ये जगत सृष्टित्व है, ये सबका अंतर्यामित्व है, निर्विशेषत्व है, ये उनके ऐश्वर्य को प्रकाश करता है, और इनमें उनके एक स्वरूप का संकेत भी प्राप्त होता है, तो परंतु इसमें माधुर्य का विकास नहीं होता। माधुरी का विकास तो होता एकमात्र निग्धता में, ऐश्वर्य प्रकाश में नहीं। जब भगवान स्वयं मुग्ध हो जाते हैं स्वयं किसी रस के द्वारा, तब वहां पर ये आनंद माधुर्य का प्रकट होता है, और वे जब इस माधुर्य के सागर में जब अवगाहन करते हैं भगवान, तो वहां दो चीज होती है, मिलन और विरह, संयोग विप्रयोग, ये दो मानव इस मधुर सरिता के विमल तट हैं। तो इन पर जब ये मधुर मधुर लीला करते हैं, तब वो असीम माधुर सिंधु जो है वो छलित होकर और ये विश्व को प्लावित कर देता है। उस समय जो जो रस माधुरी के अनुरक्त लोग हैं, वे लोग उसमें अवगाहन करके सुखी होते हैं। तो राजा यदि अपने आसन पर बैठा हुआ शासन करे इसमें कौन बड़ी बात है, पर वो जब छोटा बनकर छोटों के साथ खेले तब उसकी विशेष महत्ता होती, चमत्कार होता है। तो स्वयं भगवान इस पुण्य भोजन लीला में, वन भोजन लीला में गोप बालकों के साथ जिस प्रकार मुग्ध होकर के लीला करते हैं, इसमें विशेष माधुर्य का विकास, छोटे बच्चे बन गए। ये नारायण रूप से जब वैकुंठ में बैठते हैं और जब सारे के सारे देवगण आकर के वेद मंत्रों से इनका आराधन करते हैं, स्तवन करते हैं, उस समय कोई खास बात नहीं, माधुर्य नहीं। तो ये ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐश्वर्य तो हम बहुत देखते हैं, जब जब कभी कोई विपत्ति आती जाकर स्तवन करते हैं, जो भगवान कहते हैं विपत्ति नाश हो जाएगी, आकाशवाणी होती हम समझ लेते हैं कि हो जाएगी नाश, ईश्वर है, सर्वलोक में ईश्वर है। लेकिन आज जो हमने देखा, ब्रह्मा जी ने सोचा कि आज जो हमने देखा ये तो पहले कभी नहीं देखा। इस प्रकार की मधुरिमा, इस प्रकार का मीठे रस का प्रवाह ये तो आज ही देखा, इससे मन भरा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा अहंकार जो है ये रहा ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई कुछ और देखें, कुछ और करें। तो बछड़े इनको बड़े प्यारे, ये स्वयं ही घास छील छील करके नरम नरम तोड़ तोड़ करके और बछड़े के गले में हाथ डाल लेते, पुचकारते, सहजते, सहलाते और मुंह में घास दे देते उसके घास का। बड़ा आनंद आता इनको और ये छोटे छोटे बछड़े दूध पीने वाले भी थे, तो उनके मुंह से जो घास आधा चावा हुआ फेंक दे जाए उसको उठा के फिर मुंह में दे देते। तो ब्रह्मा जी ने ये सब देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये लीला तो बड़ी बड़ी मधुर थी, ये हम फिर देखें। तो यहां एक शंका उठी कि भाई ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम अपनी माया से इन बछड़ों को मोहित करके हर ले जाए, और भगवान ने गीता में कहा है देवी हिषा गुण मई मम माया दुरत्या मानवे प्रपद्यंते माया मृतांतरंति थे, जो मेरे प्रपन्न हो जाते हैं वे इस माया से तर जाते हैं। तो कहां प्रपन्न होने वाले माया से तर जाएं जिनके साक्षात्कार नहीं है, और यहां तो स्वयं भगवान साथ हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, ये बच्चे भी माया से मुक्त हो जाएं ये कभी संभव है? बोले ना ये संभव नहीं। तब बोले ये माया से मुग्ध क्यों हुए और बछड़े भी हुए और फिर वो बालक भी हुए, क्या हुआ कि इधर जब ये बछड़े ने ढूंढते ढूंढते रहे तो उधर ब्रह्मा ने देखा कि एक काम और करो, इन बालकों को और ले जाओ। तो बालकों के भी मन में भगवान की लीला शक्ति ने ऐसी अद्भुत प्रेरणा की कि वे उन पर आवरण आ गया, वो भी ब्रह्मा को नहीं देख सके और ब्रह्मा जी के माया से नहीं भगवान की इच्छा से विमुग्ध होकर वे भी ब्रह्मा जी के द्वारा हरे गए, और जहां पर वो बछड़े थे वहीं पर उनको भी ब्रह्मा जी ने सुलाए दिया। तो इसमें तीन चीज थी, इसमें भगवान की इस लीला शक्ति के प्रकाश में जो ब्रह्मा जी के अहंकार के रूप में प्रकट हुई, तीन चीजें थी। एक चीज तो थी ब्रह्मा जी की लीला दर्शन इच्छा, बड़ी सुंदर चीज है किसी प्रकार हम लीला देखें, ये रसभरी लीला देखें। दूसरी चीज उनको याद आ गई है, बड़ी मधुर चीज, ये भगवान जब छोटे से बच्चे ये मैया की गोद में खेलते, मैया दूध पिलाती, मैया लाल लड़ाती, ये गोपियां वहां पर पहुंच जाती और अतृप्त नयनों से ये देखती रहती गोप सुंदरियां उनको, और मानो अपने मन के भाव श्री श्याम सुंदर के हृदय पर अंकित करती चली जाती। उनके मन में उत्कंठा होती कि यशोदा की भांति हम भी दूध पिलाएं, हमारा भी स्तनपान करे, हम भी अपनी हृदय से जैसे यशोदा बच्चे को लगाती हम भी लगा लें, और किसी प्रकार ये हमारी गोद में वैसे ही खेले जैसे इनकी गोद में खेलते हैं। तो बिचारी बार बार कहती कि मैया जरा हमें दे देना, एक बार हमें दे दे मैया। मोख गोपाल ही मोखो देरी, देखो बदन कमल नीके कर ता पाछू तू कनिया लहरी। ये कहती कि मैया एक बार दे दे, एक बार कन्हैया हमारी गोद में आ जाए और मैं अच्छी तरह से इनके मुख कमल को देख लूं, फिर तू गोद ले लेना। अति कोमल कर चरण सरूर अधर दसन नासा सौहरी, लटकन शीर्ष कंठ मन भ्रागत मनमत कोटि वार ने गहरी। बासर निशा विचारती हम सखी, ये सुख कदम पायो मैरी। निगमनि धन सनकादिक सर्वस, बड़े भाग्य पायो है तैरी। यशोदा से कहती मन ही मन कहती, कभी कभी रो कर कह भी देती कि यशोदे तेरा बड़ा भाग्य है, जो वेदों की संपत्ति है, जो सनकादि मुनियों का सर्वस्व है, वो तेरी गोद में खेल रहा है। ये सुख मुझे तो कभी नहीं मिला। जाको रूप जगत को लोचन, कोट चंद्र रज लाज तहरी। सूरदास बल जाए यशोदा, गोपिन प्राण पूतना बैरी। पूतना के बैरी गोपियों के प्राण, इन पर उनकी आंखें अटकी रहती, लोचन अटके रहते, कभी ये हमारे, हम इनको गोद में ले लें, हमारे बच्चे बन जाए, हमारा स्तनपान करें। लमना ले ले उछंग अधिक लोभ ला गये, निरखद निंदक निवेश करते वोट आ गए। निवेशों को सुलाहना देती कि आंखों की पलक क्यों बन गई, श्याम सुंदर इतनी देर के लिए भी सामने से क्यों हट जाते हैं। संध्या हो जाती, निंदरानी कहती जाओ भैया तुम लोग अपने घर चले जाओ, और वो अपना बच्चे को लेकर के श्याम सुंदर को अंदर चली जाती। ये बिचारी देखती रह जाती, ये बोलती नहीं। अब वो शरीर तो इनका आता पर मन वहीं रह जाता श्याम सुंदर के पास, घर के काम में लगती, घर का काम होता नहीं, और मन ही मन प्रार्थना करती है भगवान हे विधाता, अगर हमने कभी कोई पुण्य किया हो और अगर हम पर तुम्हारी कृपा हो तो यशोदानंद हमारे कभी पुत्र बन जाए, और ये बजरानी की तरह हम भी कभी उनको बेटा समझ करके अपनी गोद में लें। इस प्रकार फिर ये बच्चा चाहने जब जाने लगे तो इनकी आकुलता और बढ़ी, तो भगवान के मन पर अंकित हो गई ये बात कि इनका बेटा बनना है। अब कैसे बेटा बने ये बात आगे के। अब ये दशा तो गोपांगनाओं की और गायों की दशा, ये ब्रज की गायें हैं जो है ये मामूली थोड़ी है, ये मूक पशु, ये राशि राशि गायें, गिनती नहीं है, सबके अलग अलग बछड़े। सो ये भी जब श्री श्याम सुंदर को देखते तो इनका स्त्री अरस उमड़ पड़ता, पर इनके पास तो भाषा नहीं। ये बिचारे मूक पशु अपनी मन की बात कह सके नहीं, नंदरानी को भी कैसे कहें, गोपियों ने तो इशारे से कह दिया, वाणी से भी कह दिया। ये बड़ी विचित्र उत्सुकता को लेकर के हामदा रव करती, इनके स्तनों से दूध बहने लगता, और नहीं मन ये कहती कि अब ये बछड़े कैसे बने। अरे ये श्याम सुंदर कभी कभी ये कृपा करते हैं, मुंह लगाकर किसी किसी गाय के थन के दूध पी लेते हैं, पर वो तो कोई कोई भाग्यवती होती, ऐसा तो नहीं कि ये हमारे बछड़े ही बन जाए। कभी कभी स्नेह मरता तो जैसा जीभ निकाल के चाट लेती है श्याम सुंदर को, पर साथ ही ये मन में डर लगता कि हमारी जीभ तो बड़ी खड़खड़ी तीखी, और कहीं श्याम सुंदर के श्री अंगों में क्षत लग गया, आघात हो गया तो छिल जाएगा कहीं हमारी कड़ी जीव, और इनके कोमल कोमल सारे के सारे अंग जीवा बिचारी समेत लेती। सूंघ कर शांत हो जाती, सूंघती केवल सूंघ के शांत हो जाती, वो एक अंतर्यामी जान पाते इस बात को कि इनके मन में क्या है। तो इच्छा होती जब वो गाय देखती गोधूली धूसरित, अपने ही पैरों से उड़ी धूल से भगवान का श्याम सुंदर अंग सारा धूसरित हो रहा है, तो चाहती जाए इनको, इसको चाट लें, तब डर जाती और यशोदा मैया पास रहने की थी बहुत देर तक गाय उनके कहती कोई गाय मार देगी, तो ये बिचारी इस प्राकृतिक बंधन में बंधी हुई सोचती रहती कि कभी श्याम सुंदर हमारे पास भी रहें, तो असंभव मानती कि ये क्यों बछड़े बने और क्यों हमारे पास रहें। तो ये तीन बातें भगवान श्याम सुंदर के मन में आई, ब्रह्मा को रसलीला दर्शन कराना, गोप रमणियों के पुत्र बनकर उनको स्नेह दान करना, उनके स्नेह को लेना और गायों को परित्रस्त करना उनके बछड़े बनकर, ये तीन अभिसंधियों को लेकर के भगवान की लीला शक्ति ने ब्रह्मा के मन में प्रेरणा की और स्वयं योग शक्ति ने इनको मोहित किया, बछड़ों को और गोप बालकों को नहीं, ब्रह्मा के सामर्थ्य नहीं कि ब्रह्मा की माया इन्हें मोहित कर सकती। भगवान के प्रपन्न हो जाने वाले माया से तर जाते हैं, तो भगवान के समीप रहने वाले ये बछड़े और बच्च ये गोप बालक इन पर ब्रह्मा की माया कुछ काम करे इन्हें मोहित कर सके ये असंभव बात, परंतु ब्रह्मा का अहंकार थोड़ा वहां पर, उस अहंकार ने यही समझा कि हमने ये काम किया। तो इस प्रकार से वो भगवान श्री कृष्णचंद्र जब यहां आए और यहां आकर के देखा कि ये तो यहां पर हमारे भाई साहब ये सब भाई भी नहीं, सब के सब कहां चले गए, तो देखा भाई कहीं लुक छिप गए होंगे तो इनकी चीजें देख लें। तो वो जो पत्तलें बिछी थी, वो जो छींके थे, वो सामान था, उन्होंने जूतियां अलग अलग खोल के अपनी कोई कोई जूती लाया था, सबको भी लाए थे, खोल के रखी थी, उनकी छड़ियां थी, उनकी बेल्टें थी, उनके सिंगे थे, देखा कि कोई नहीं मिला, कोई भी चीज नहीं। अब तो श्री कृष्णचंद्र बाल माधुरी और यहां विशुद्ध सत्य रस उनका फिर जागृत हो गया। माताएं पूछेंगी भैया तू अकेला आ गया और हमारे बच्चे कहाँ रह रहे, तो मैं कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगा, क्या करूंगा, कुछ भी बात मन में नहीं आई। तो बच्चों को पुकारने लगे, उदास होकर के पुकारने लगे बच्चों को, ये बाल लीला भगवान की। तो बोलने लगे, अरे अरे भैयाओ, अरे सुबल, अरे श्रीराम, बहुत देर हो गई, सूर्यास्त होने जा रहा है, और अरे आओ ना भैया, आ जाओ, कहाँ तुम लोग खो गए, कहाँ चले गए, देखो मैं हैरान हो गया और मेरे तो प्राण नहीं रहे, तो तुम लोग जब गए तो फिर मैं रह के क्या करूंगा, उदास हो गए और अत्यंत मन में इनके विषाद छा गया। अब जिनका नाम लेने से, जिनके नाम के आभास से सारा विषाद शोक भय सदा के लिए मिट जाता, जिनके स्मरण के क्षेत्र में ये सब दुर्भाव नहीं आ सकते, नहीं टिक सकते, वे स्वयं मनोहर बाल लीला प्रमत्त भगवान श्याम सुंदर ये बछड़ों को और बच्चों उन सखाओं को न पाकर विषादग्रस्त होकर पुकारने लगे, पर कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तब इनकी ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि अब अगला काम करना चाहिए, माधुर्य में बाधा पड़ गई, नमामि कितनी देर तक चलता रहेगा ऐसा आडंगा। तो भगवान के मन में आ गया, मन में आ गया भगवान के कि ये सब जो कुछ है ये ब्रह्मा का कार्य है। अब भगवान जान गए,